ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 30 अक्टूबर 2022 के लिए है। विषय: हमेशा की सजा। स्वर्णपथ। योहन्ना। परमेश्वर प्रेम है। उत्तरदायी ध्यान: योहन्ना। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वो ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। और जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वो अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस ना खाना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है। हे बालको, हम वचन और जुबान ही से नहीं पर काम और सत्य द्वारा भी प्रेम करें। पाठ उपदेश बाइबल में से गलतियों। सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने सम्मान प्रेम रख। मरकस। यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। लुका। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापिक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और ठीक करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। और देखो, कई लोग एक मनुष्य को जो झोले का मारा हुआ था खाट पर लाए, और वो उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। और जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके, तो उन्होंने कोठे पर चढ़कर कपड़ैल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उनसे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। मैं तुझसे कहता हूँ कि उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और वो तुरंत उनके सामने उठा, और जिस पर वो पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। और उसके बाद वो बाहर गया और लावी नाम एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। तब वो सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। और लावी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ी दावत की, और चुंगी लेने वालों की और औरों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी। और फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से ये कहकर कुड़कुड़ाने लगे कि तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो। यीशु ने उनको उत्तर दिया कि वेदी भले चंगों के नहीं परंतु बीमारों के लिए अवश्य है। मैं धार्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। मत्ती। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में बंद के युगे होगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में बंद के युगे होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा के बंद के युगे होगा, और जो कोई कहे मूर्ख वो नर्क की आग में बंद के युगे होगा। इसलिए यदि तू अपनी भीड़ वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भीड़ वहीं वेदी पर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भीड़ चढ़ा। रोमियो। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो और भलाई से लगे रहो। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया रखो। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो। प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। पवित्र लोगों में जो कुछ अवश्य हो उसमें उनकी सहायता करो। पाहुनाई करने में लगे रहो। अपने सताने वालों को आशीष दो श्राप न दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सामान रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना बनो। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम अपने भ्रासक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। यूहन्ना। हे मेरे बालको, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। फिर मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ, और ये तो उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति भी चमकने लगी है। जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वो अब तक अंधकार में ही है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। क्रिश्चियन साइंस में पहला कर्तव्य भगवान का पालन करना है, एक मान रखना और दूसरों को खुद के रूप में प्यार करना है। अपने पड़ोसी को अपने सामान्य प्यार करना एक दिव्य विचार है, लेकिन इस विचार को कभी भी आध्यात्मिक इंद्रियों के माध्यम से देखा महसूस नहीं किया जा सकता और ना ही समझा जा सकता है। नश्वर के माध्यम से ईश्वर का प्रकट होना खिड़की के शीशे से गुजरने वाले प्रकाश के समान है। प्रकाश और कांच कभी आपस में नहीं मिलते हैं, लेकिन बात यह है कि कांच दीवारों की तुलना में कम अपारदर्शी है। नश्वर मन जिसके माध्यम से सत्य सबसे अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, वो है जिसने सत्य के लिए एक बेहतर पारदर्शिता बनाने के लिए बहुत अधिक भावतिकता, बहुत त्रुटि खो दी है। फिर जैसे बादल पिघलकर पतले वाष्प में बदल जाता है, ये अब सूर्य को नहीं छुपाता है। सर्व प्रेम एक ठोस शरीर की तुलना में अधिक अपारदर्शी है। एक रोगी ईश्वर की आज्ञा का रीति में प्रेम के सर्वभाविक विलायक के साथ भंग करने के लिए हमें शर्म करनी चाहिए। आत्मा इच्छा, आत्मा अवचित्य और आत्म प्रेम जो आध्यात्मिकता के खिलाफ युद्ध करता है और पाप का कानून मौत है। ईश्वरीय प्रेम मनुष्य को सुधारता है और नियंत्रित करता है। पुरुष क्षमा मांग सकता है, लेकिन ये ईश्वरीय सिद्धांत केवल पापी को सुधारता है। पाप के परिणाम के रूप में पीड़ित होने के लिए पाप को नष्ट करने का साधन है। जब तक भावतिक जीवन में पाप नष्ट नहीं हो जाता, तब तक पाप का हर आनंद उसके दर्द के बराबर होगा। स्वर्ग तक पहुंचने के लिए हमें होने के दिव्य सिद्धांत को समझना चाहिए। परमेश्वर प्रेम है, इससे अधिक हम पहुंच नहीं सकते, ऊंचा हम देख नहीं सकते और आगे हम जा नहीं सकते। ये मानने के लिए कि ईश्वर क्षमा करता है या पाप को दंडित करता है, जैसा कि उसके दया की मांग की गई है, बिना शर्त के प्यार को गलत समझना और प्रार्थना को अपराध के लिए सुरक्षा कवच बनाना है। यदि मृत्यु नामक परिवर्तन पाप, बीमारी और मृत्यु में विश्वास को नष्ट कर देता है, तो विघटना के किशम में खुशी जीत जाएगी और हमेशा के लिए स्थायी हो जाएगी। लेकिन ये ऐसा नहीं है। पुरंता से ही पुरंता प्राप्त होती है। जो लोग अधर्मी हैं वो अभी भी अधर्मी ही होंगे जब तक कि दिव्य विज्ञान में मसीह सत्य सभी अज्ञान और पाप को हटा नहीं देता। वो पाप और त्रुटि जो हमें मृत्यु के तुरंत बाद प्राप्त होती है उस क्षण में समाप्त होती है, लेकिन इन त्रुटियों की मृत्यु तक होती है। पूर्ण आध्यात्मिक होने के लिए मनुष्य को पाप रहित होना चाहिए और वो पूर्णता तक पहुंचने पर ही इस प्रकार बनता है। हत्यारे हालांकि मारे जाते हैं जिससे पाप का त्याग नहीं होता, वो ये मानने के लिए अधिक आध्यात्मिक नहीं है कि उसका शरीर मर गया है और ये सीख कर उसका क्रोधित मन नहीं मरा। उनके विचार तब तक शुद्ध नहीं होते जब तक कि बुराई अच्छे से निरास्तर नहीं होती। उसका शरीर उसके मन के समान भौतिक है और इसके विपरीत भी। अधर्म को छोड़ते हुए जिन पापों को क्षमा किया जाता है वो खुशी पाप के बीच में वास्तविक हो सकती है कि शरीर की तथाकथित मौत पाप से मुक्त हो जाती है और ये कि भगवान की क्षमा याचना है, लेकिन पाप का विनाश होता है। ये गंभीर गलतियां हैं। हम जानते हैं कि सब बदल जाएगा एक पल में जब आखिरी तुरही धुनी जाएगी, लेकिन ज्ञान का ये अंतम निमंत्रण तब तक नहीं आ सकता जब तक कि मसीह चरित्र की वृद्धि में प्रतीक कम आमंत्रण के लिए नश्वर ना हो गए हों। स्वर्ग एक स्थानीयता नहीं है बल्कि मन की एक दिव्य स्थिति है जिसमें मन की सभी अभिव्यक्तियां समान जैसा पूर्ण और अमर हैं, क्योंकि पाप नहीं है और मनुष्य अपने स्वयं की धार्मिकता नहीं पा सकता बल्कि प्रभु के मन से पा सकता है, जैसा कि शास्त्र ही ये कहते हैं। घृणा, ईर्ष्या, बेईमानी, भय और ऐसी अन्य चीजें एक आदमी को बीमार बनाती हैं और ना तो भावतिक चिकित्सा और ना ही मन उसे स्थायी रूप से मदद कर सकता है। यहाँ तक के शरीर में भी, जब तक कि वो उसे मानसिक रूप से बेहतर बनाता है और इसलिए उसे उसके विध्वंसक से बचाता है। मूल त्रुटि नश्वर मन है। घृणा क्रूर इच्छाओं को बढ़ाती है। बुरे इरादों और उद्देश्यों का भोग किसी भी आदमी को एक निराशाजनक पीड़ित बनाता है जो सबसे कम प्रकार के साहस से ऊपर है। क्रिश्चियन साइंस मनुष्य को भविष्यवाणियों में महारत हासिल करने के लिए आज्ञा देती है, दया के साथ घृणा करने के लिए, शुद्धता के साथ वासना को जीतने के लिए, दान के साथ बदला लेने के लिए और ईमानदारी के साथ धोखे को दूर करने के लिए। यदि आप स्वस्थ, खुशी और सफलता के खिलाफ शुद्ध जानकारियों की एक सेना को संजोना नहीं चाहते हैं तो इन त्रुटियों को उनके शुरुआती चरणों में नष्ट कर दें। अच्छा इंसान आखिरकार अपने पाप को दूर कर सकता है। स्वयं को नष्ट करना पाप की आवश्यकता है। अमर मनुष्य ईश्वर की सरकार प्रदर्शित करता है जिसमें पाप करने की शक्ति नहीं है। दुख, पाप, मृत्यु, विश्वास असत्य हैं। जब दिव्य विज्ञान को सार्वभौमिक रूप से समझा जाता है तो उनके पास मनुष्य पर कोई शक्ति नहीं होगी। मनुष्य अमर है और दिव्य अधिकार से जीवित है। पाप राहत आनंद, जीवन की पूर्ण सिद्धभाव और अमरता, एक दिव्य सुख या पीड़ा के बिना असीमित दिव्य सुंदरता और अच्छाई का होना एकमात्र सत्य अविनाशी पुरुषों का निर्माण करता है जिसका अस्तित्व आध्यात्मिक है। अस्तित्व की ये स्थिति वैज्ञानिक और शन है। एक पूर्णता केवल उन लोगों के द्वारा समझ में आती है जिनके पास दिव्य विज्ञान में मसीह की अंतम समझ है। ये जीवन अनंत है, यीशु कहते हैं, है नहीं होगा, और फिर वो अपने पिता और स्वयं के वर्तमान ज्ञान के रूप में अनंत जीवन को परिभाषित करता है जिसका अर्थ है प्रेम, सत्य और जीवन का ज्ञान। मनुष्य अमर है और शरीर मर नहीं सकता क्योंकि पदार्थ के पास समर्पण करने के लिए कोई जीवन नहीं है। पदार्थ, मृत्यु, बीमारी और पाप नाम की मानवीय अभिधारणाएं सभी नष्ट की जा सकती हैं। ये शास्त्र, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वास्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, सचमुच पूर्ण होता है जब हम सत्य की सर्वोच्चता के प्रति सचेत होते हैं जिसके द्वारा त्रुटि की शून्यता दिखाई देती है। और हम जानते हैं कि त्रुटि की शून्यता उसकी दुष्टता के अनुपात में है। वो जो मसीह के वस्त्र के ऊपरी भाग को छूता है और अपने नश्वर विश्वासों, पशुवता और घरना में महारत हासिल करता है, उपचार के प्रमाण में आनंदित होता है, एक मधुर और निश्चित अर्थ में कि ईश्वर प्रेम है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तुराही में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि प्रेम मेरे साथ रहता है। प्रेम के सौंते और प्रेम की लाठी से मुझे शांति मिलती है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं प्रेम के धाम चेतना में वास करूंगा। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में शपथ कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों को स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और न व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, पारोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।